समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और डेडलाइन में बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पर और चर्चा करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Manoj, Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very fresh episode of Parikrama. And the week has just begun. The first day of the week is about to close, so probably you're returning from office or just packing your bags from office. And that's the correct time to probably tune into our show, in which we bring you an amalgamation of the latest headlines. And apart from that, since the name of the show is Parikrama, to zahir hai, hum log desh ki parikrama pe bhi niklenge, desh ke mukhtalif hisson mein jayenge, to see what interesting stories are pouring in through our correspondents. All of that in the next half an hour roughly. So let's start with the headlines. Donald Trump promises to act with historic speed and strength to fix every single crisis facing US ahead of his inauguration as the US president in Washington tonight.
Videsh Mantri Dr. Subramaniam Jayashankar ne Japan ke Videsh Mantri ke saath dvipakshiya sahyog mein pragati aur Quad se sambandhit ghatnakram par charcha ki.
Uttarakhand cabinet approves uniform civil code manual.
कोलकाता की सियालदा अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई।
एंड टुडे इज द लास्ट डे फॉर विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस फॉर दिल्ली असेंबली इलेक्शंस।
और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब का सामना दिल्ली एसजी पाइपर से होगा।
And now it's time for Dateline Inter, in which we discuss topics, of national and international relevance. And today we are going to talk about Penguin Awareness Day. Let's start the segment with a very, very interesting quote that Penguins are proof that everything is better in black and white.
जी हाँ, पेंगुइन जिस तरह गर्मजोशी के साथ घूमते हैं वो इस बात का एक सुंदर रूपक है कि कैसे प्यार हमारे जीवन में गर्मी और आराम ला सकता है।
And today we observe the Penguin Awareness Day. The goal of this day is to raise awareness of penguin conservation around the world by emphasizing the protection of the habitat.
जी हाँ, ये दिन इस पक्षी के अद्वितीय गुणों और व्यवहारों का सम्मान करता है। इस दिवस का उद्देश्य इन न उड़ने वाले पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी प्रजातियों और आवास को संरक्षित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन उल्लेखनीय पक्षियों को देख सके।
And Manoj, let me just tell our listeners that penguins are among the one of the most social birds. In fact, it is the most social of all birds. All species are colonial in nature. Penguins may swim and feed in groups, but some may be solitary when they are diving for food. Emperor penguins have been observed feeding in groups with coordinated diving.
जी हाँ, प्रजनन के मौसम के दौरान पेंगुइन तट पर आते हैं और विशाल कॉलोनियों में घोंसला बनाकर रहते हैं, जिन्हें रुकरीज कहा जाता है। कुछ रुकरीज में सैकड़ों हजारों पेंगुइन शामिल रहते हैं और सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए रहते हैं।
Our listeners would be surprised to know that though these amazing creatures are birds, penguins have flippers instead of wings. They cannot fly, and on land they waddle walking upright. Though when snow conditions are right, they will slide on their bellies.
पेंगुइन पानी के अच्छे तैराक और गोताखोर होते हैं, और कुछ प्रजातियां 15 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती है। पेंगुइन का विशिष्ट रंग सफेद पेट वाला काला शरीर पानी में पक्षी को छिपाने में मदद करता है। क्योंकि वो छोटे झींगा मछली केकड़ों और स्क्विड के भोजन की तलाश करता है.
And as I mentioned that though penguins may not be able to fly across the sky, but they can fly underwater, as we say, and that means they can just swim as well as any fish. And instead of wings, these birds have flippers that can propel their streamlined bodies up to 15 miles per hour through the sea in pursuit of a meal.
क्या आप जानते हैं ये प्यारे पक्षी कहाँ रहते हैं? खैर, सभी पेंगुइन भूमध्य रेखा के दक्षिण में रहते हैं. ये पक्षी अंटार्कटिका के बर्फीले पानी से लेकर इक्वाडोर के तट पर उष्णकटिबंधीय गैलापागोस द्वीप समूह लगभग भूमध्य रेखा के पार तक रहते हैं.
Yes, Manoj, that's right. And in fact, 5 species of penguin are found in Antarctica. And it's no surprise that this massive frozen land mass has earned the nickname of the land of the penguin. These iconic flightless birds share their chilly southern home with a diverse web of life in the ocean, on the ice, and under a sky of stars and aurora, that is the southern lights.
Saira, क्या आपको पता है? अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रयोगशालाओं में से एक भी माना जाता है. यही कारण है कि इतने सारे वैज्ञानिक ठंड का सामना करते हुए वहां काम करते हैं.
That's true, Manoj. And penguin calls or vocalizations are individually identifiable. These allow mates to recognize each other and also their babies. This is important because members of a large colony of penguins are nearly indistinguishable by sight.
आइए हम इस बारे में और अधिक समझें कि जलवायु परिवर्तन जैसे दबावों से पेंगुइन कैसे प्रभावित हो रहे हैं. जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका में रहने वाले पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन और एडेली पेंगुइन के लिए एक बढ़ती चिंता का विषय है. ये प्रजातियां भोजन और प्रजनन के स्थानों तक पहुंच के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर रहती हैं, लेकिन समुद्री बर्फ गायब हो रही है और इसके साथ पेंगुइन की आबादी भी खत्म हो रही है.
That's right, Manoj. It's in fact it's a travesty that you know we are losing such a beautiful species, and not only we'll lose them if we continue with the current trends of you can say global warming, but the impact will sooner than later will be felt by us as well who are living in other parts of the world. And the only solution to secure their future is to limit global warming. That is, I think, the most effective way. And Antarctica's land based species have adapted to survive the coldest, the windiest, highest and driest continent on Earth. Antarctica provides priceless services to the planet and humankind. It also helps regulate global climate by driving atmospheric circulation and ocean currents and absorbing heat and carbon dioxide. Antarctica even drives weather patterns in Australia.
Emperor penguin प्रजनन के लिए बर्फ पर निर्भर है और अंटार्कटिका की प्रजातियों में से ये सबसे असुरक्षित प्रजाति है. सबसे खराब स्थिति में सम्राट पेंगुइन के 2100 तक विलुप्त होने का खतरा है. हमारे अध्ययन में इस नियति का सामना करने वाली ये एकमात्र प्रजाति है.
I think when we say 2100 तो बहुत डिस्टेंट लगता है, लेकिन वक्त कितनी जल्दी गुजर रहा है. वी कैन नॉट प्रॉबली फैथम दिस. एंड इन फैक्ट सिंस वी नो दैट पेंगुइन्स थ्राइव बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द फूड इन द ओशन, द फिश, ऑन द मरीन लाइफ, सो कमर्शियल फिशिंग शुड बी यू कैन से लिमिटेड और कम्प्लीटली बैंड इन द सदर्न ओशन रीजन, बिकॉज कमर्शियल फिशिंग कैन फोर्स मेनी पेंगुइन स्पीशीज टू कम्पीट for the fish that they eat. And the practice can also lead to accidental capture, drowning in fishing nets as well.
Penguin krill, squid aur machhliyan khate hain. पेंगुइन की विभिन्न प्रजातियों की भोजन प्राथमिकताएं थोड़ी भिन्न होती हैं, जिससे प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है.
एंड एम्परर एंड किंग पेंगुइन्स मे मेनली ईट फिश एंड स्क्विड्स. द इनटेक वेरीज विद द क्वांटिटी एंड वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. सो लेट्स क्लोज दिस टॉपिक नाउ, होपिंग दैट आवर लिसनर्स वुड हैव गेन्ड सम इनसाइट्स अबाउट द यू नो व्हाट व्हाट पेंगुइन्स mean to us and to the planet. Indeed, they are truly one of the, not just the cutest creatures, but one of the most precious creatures on the planet, and they need our support to save them. Let us save penguins. The second topic that we're going to discuss, Manoj, is two major events are happening in the U.S. today. We all know, as I told in the headlines, that Donald Trump will be having his swearing-in ceremony tonight. And apart from that, it's, you know, the civil rights leader, Dr. Martin Luther King Jr.'s day is also being observed today.
1960 के दशक के दौरान अफ्रीकी अमरीकी नागरिक अधिकार नेताओं में सबसे प्रभावशाली मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सार्वजनिक आवास सुविधाओं और रोजगार में भेदभाव और 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मार्टिन लूथर किंग को 1964 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
That's right, and this day honors the achievements of Martin Luther King Jr., who advocated the use of non-violent means to end racial segregation, and he first came to national prominence during a bus boycott by African Americans in Montgomery in Alabama in 1955. And one of his famous quotes is, "The darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that."
हाँ, इसी तरह की उनकी एक पंक्ति है, जब आप पूरी सीढ़ियां नहीं देखते तब भी विश्वास का पहला कदम उठाना है।
Absolutely, and as I mentioned that the other important event in the US that's happening today is that later in the evening Mr. Donald Trump will be sworn in as the President of the US. The presidential oath will be administered by Chief Justice John Roberts at the Capitol Rotunda in Washington DC at around 8:30 p.m. Indian time, and Mr. JD Vance will take the oath as the Vice President.
क्या आप जानते हैं, शहर में अत्यधिक ठंड के पूर्वानुमान के कारण समारोह को घर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया है। पिछली बार 1985 में रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के दूसरे शपथ ग्रहण के दौरान कड़ाके की ठंड के कारण उद्घाटन समारोह को घर के अंदर स्थानांतरित किया गया था।
Yes, that's right. So we know that the ceremony will be held indoors because of very cold conditions, and which is the only second time it is being done. As you said, that the first time it happened was when Ronald Reagan was swearing in as the president. And External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will be representing India at the event. The ceremony will be attended by several foreign leaders, including Argentina's president, Italy's prime minister Giorgia Meloni, Ecuador's president, and El Salvador's president as well. Even former Brazilian president Jair Bolsonaro and former Polish prime minister will be attending the ceremony.
ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में टेस्ला के इलॉन मस्क, अमेज़न के जेफ बेजोस, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के टीम कुक और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे प्रसिद्ध व्यापारिक नेताओं के भी भाग लेने की उम्मीद है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को पीएम सूर्य घर जैसी सौर योजनाओं द्वारा बढ़ावा दिया है। सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग कर विदर्भ के वर्धा जिले के हिंगणघाट तालुका के चिचघाट राठी गांव को जल्द ही विदर्भ का पहला 100% सौर गांव बनने का गौरव प्राप्त होगा। आइए सुनते हैं हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
विदर्भ के वर्धा जिले के हिंगणघाट तालुका के चिचघाट राठी गांव को जल्द ही विदर्भ का पहला 100% सौर गांव बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। सौर ऊर्जा की रोशनी में जगमगाते इस गांव ने बिना किसी सरकारी मदद के यह उपलब्धि हासिल कर पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल कायम की है। राज्य के सार्वजनिक ऊर्जा प्रदाता महावितरण राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 2 गांवों को 100% सौर ऊर्जा से जोड़ने का अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत चिचघाट राठी राठी गांव का चयन किया गया और गांव में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता करीब 811 किलोवाट तक पहुंच गई है। वर्धा शहर से 40 किलोमीटर दूर और महावितरण के हिंगनघाट उपविभाग के अंतर्गत स्थित चिसघाट राठी के ग्रामीणों ने महावितरण के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और केंद्र सरकार की पंत प्रधान सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में भाग लिया और गांव में बिजली पहुंचाई। गांव 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला है और एकजुट होकर सौर उड़ान की ओर बढ़ रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
Next on a journey, we head towards Manipur, where different communities live together in harmony. And well, the state is also culturally rich, and every community has its unique festival organized throughout the year. Among them is the post-harvest festival, which most of the communities celebrate with joy and gaiety. The Kukizo community celebrates the Chavankut, while Mao community celebrates the Chituni every year after harvesting. Likewise, the Kabui Rongmei Naga community celebrates the Gan Nyai Festival every year, commemorating the end of the harvest season. This year, the Gan Nyai Festival began on the 12th of this month and continued for 5 days. Let's go to our Imphal correspondent to know how the festival was celebrated in Manipur.
Gan Nyai Festival is celebrated in villages and localities inhabited by Kabui Rongmei community across the state. This post-harvest festival is celebrated when the granaries are full and the whole village is free from all agricultural works. The festival consists of a series of rites and rituals, and the most significant part is the worshipping of the supreme god Tingkau Rakwang. Some of the highlights of the festival are extraction of sacred fire, invocation of god by making sound ho ho, offering of holy wine to god, cultural extravaganza, gathering and grand feast with the villagers of other communities. This year, the state-level Gan Nyai Festival 2025 was held at Sagonban Ramji Kabui Village in Imphal West District for 5 days, beginning from 12 January. Manipur Chief Minister N. Biren Singh, along with other ministers and MLAs, attended the inaugural ceremony of the festival, which was held on the first day of the festival. During the ceremony, Sri Biren appealed to all for unity among the indigenous community of the state and also to preserve the rich traditions. On the other hand, the state-level Kabui Gan Nyai Committee also organized the state-level Gan Nyai Festival 2025 at Singfu Kabui Village in Vishnupur District. The 5-day-long festival was inaugurated by State Education Minister T.S. Basant Kumar on 12 January. People of all ages representing different communities of the state participated in the Gan Nyai Festival this year, symbolizing communal harmony. Such a positive impact of the gathering would contribute to the peace and prosperity of the state and also indigenous community of Manipur.
केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय और राष्ट्रीय फैशन डिजाइनिंग प्रौद्योगिकी संस्थान ने विजन नेक्स्ट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना से भारतीय वस्त्र उद्योग, फैशन डिजाइनर और शिल्पकार वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे। साथ ही नई डिजाइनें तैयार करने के लिए यूरोप और अन्य देशों की तकनीकी मदद भी नहीं लेनी पड़ेगी। एक रिपोर्ट।
निफ्ट शिलांग में फैशन नेक्स्ट परियोजना पिछली 17 जनवरी को औपचारिक रूप से शुरू की गई। इस दौरान परिधि नाम से एक द्विभाषी फैशन ट्रेंड बुक भी लॉन्च की गई। परियोजना के बारे में निफ्ट शिलांग के निदेशक शंकर कुमार झा ने बताया कि छात्रों को ट्रेंड स्पॉटिंग और डेटा संग्रह प्रणाली के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
Vision Next tool, first time in India has been developed, and certainly this particular forecasting tool will help in every walk of the life across the India in understanding ki what kind of things is going to be adopted in the next few months, next few years, and those who are the stakeholders, whether the students, designers, various state government officials like the DC Handicraft, the KVIC, obviously the dependency of the accessing this trends and forecasting tool from the European market will certainly be reduced, and more we will be dependent on our indigenous trends and forecasting tool. This is the objective of our Honorable Prime Minister, which I think we have fulfilled. The Ministry of Textile has sponsored this project to NIFT, and our NIFT faculty team continuously made the effort since last 3-4 years, and we completed this trends and forecasting tool last year in the 2024 September. We have inaugurated this by the Honorable Textile Minister Sri Giriraj Singh.
Nishchit hi Vision Next Pariyojana भारतीय पारंपरिक वस्त्र और शिल्प को चलन के अनुसार नए नए फैशनेबल वस्त्र और शिल्प तैयार करने में मदद देगी. साथ ही तकनीकी मदद लेने के लिए फैशन उद्योगों की यूरोप और अन्य देशों पर निर्भरता भी समाप्त होगी. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिलांग से परितोष दीक्षित.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
That's right. In the Australian Open tennis tournament, world number one Italian star Jannik Sinner advanced to the quarterfinals of the men's singles after defeating Danish player Holger Rune in a thrilling four-set encounter at the Rod Laver Arena in Melbourne. Sinner faced physical struggles in the second set and required a medical timeout, but rallied to win the third and fourth sets, securing victory. Meanwhile, fellow Italian Lorenzo Sonego defeated American qualifier Lan Etienne in four sets to reach his first Grand Slam quarterfinals. In women's singles event, ace American player Madison Keys pulled off a stunning upset against 6-seed Elena Rybakina of Kazakhstan in her fourth round fixture, winning at the Margaret Court Arena. Additionally, Ukraine's Elena Svitolina defeated Russia's Veronika Kudermetova to secure her spot in the quarterfinals.
महिला हॉकी इंडिया लीग में आज रांची में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर से होगा. मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा. पुरुष वर्ग में श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स का सामना राउरकेला के जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब से होगा. ये मैच रात 8:15 बजे से शुरू होगा.
एंड इन बिजनेस न्यूज टुडे, वेल बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस टुडे एंटर्ड विद गेन्स ऑफ ओवर 0.5%, ड्रिवन बाय रैली इन बैंकिंग, communication and financial services sectors. The 30 share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, rose 454 points to close at 77,073. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 advanced 141 points to settle at 23,345. And with a lot of international developments, including Donald Trump's swearing in, we can probably hope to see the rising trend for the next few days in the stock market. And now it's time for Azadi Ka Safar.
We remember freedom fighter Khan Abdul Ghaffar Khan, who died on January 20, 1988. An advocate for Hindu-Muslim unity, he was a prominent follower of Mahatma Gandhi and was also known as Frontier Gandhi.
A foremost leader of the Pashtuns in Northwest Frontier Province of British India, Ghaffar Khan entered the national movement in 1919. During agitation over the Rowlatt Acts. In 1920, he joined the Khilafat movement, and in 1921, he was elected president of a district Khilafat committee in Northwest Frontier Province. In 1929, Khan founded the Khudai Khidmatgar, an anti-colonial non-violent resistance movement.
I'm Khudai Khidmatgar, but I want to tell you कि खुदा को खिदमत की जरूरत नहीं है. खुदा की खिदमत खुदा की मखलूक की खिदमत. यहाँ बदकिस्मती ये है दुनिया में और हिंदुस्तान में, अगर आप देखें मखलूक जो है मुसलमान मखलूक मुसलमान को समझता है, हिंदू मखलूक हिंदू को समझता है, ईसाई मखलूक ईसाई को समझता है, यहूदी मखलूक यहूदी को समझ. हम उनको कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब जो हैं یہ سب خدا کے مخلوق.
The Khudai Khidmatgar's popularity with the people prompted the colonial government to launch numerous crackdowns against Khan and his supporters. Khan strongly opposed the proposal for the partition of India.
In June 1947, Khan and other Khudai Khidmatgar leaders formally issued the Bannu resolution to the British authorities, demanding that the ethnic Pashtuns be given a choice to have an independent state of Pashtunistan. However, the British government refused to comply with the demands of this resolution. In response, Khan and his elder brother, Abdul Jabbar Khan, boycotted the 1947 Northwest Frontier Province referendum.
In 1987, Khan was awarded the Bharat Ratna. He was the first non-Indian to receive this honor. We salute the great nationalist.
We also remember nationalist Tej Bahadur Sapru, who died on the 20th of January 1949. A lawyer by profession, Sapru was a key figure in India's struggle for independence and played a prominent role in drafting of the Indian Constitution. It was Tej Bahadur Sapru who helped to bring about the Gandhi-Irwin Pact in 1931. In September 1932, Gandhiji began his fast against the communal award, facilitating separate electorate for depressed classes. Tej Bahadur Sapru was also in part responsible for the Pune Pact, modifying the communal award, after which Gandhiji ended his fast.
Following the breakdown of the Gandhi-Jinnah talks, Tej Bahadur was appointed chairperson of a committee in November 1944 to examine the communal issue in a judicial framework. Sapru selected 29 committee members, representative of all communal groups, and submitted proposals to the Viceroy, Lord Wavell, in an attempt to break the political deadlock.
The committee's report contained a detailed historical analysis of proposals and a rationale for its constitutional recommendations. On the critical question of partition, the Sapru committee made a plea to avert the creation of Pakistan.
Sapru was also a member of the Defence Committee in the 1945 trials of Indian National Army officers for treason. He played a key moderating role throughout the constitutional debates. Tej Bahadur Sapru died on January 20th, 1949. We salute the great nationalist.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्म दिवस. सायरा, सबसे पहले शुरू करते हैं रंगमंच के प्रसिद्ध निर्देशक, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निर्देशक रतन थियाम से. उनका आज जन्म दिवस है. इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ कई नाटकों का निर्देशन किया. रतन थियम पारंपरिक संस्कृत नाटकों को उनकी आधुनिक व्याख्या के साथ प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उनका रंगकर्म अद्भुत रंग संयोजन और अप्रतिम लय के कारण अनूठा है. वे अपना चित्रकार व कवि होना न सिर्फ अपनी चित्रकृतियों व कविताओं में व्यक्त करते हैं, बल्कि उनका रंग कार्य भी इनका अचूक प्रमाण है. वे नाट्य विधा और उससे संबद्ध कला माध्यमों के विकास में विशेष रूप से सक्रिय हैं. उन्होंने अनेक भारतीय एवं विदेशी नाटक का मंचन करने के साथ साथ भास के दो नाटकों कर्णभरम और उरुभंगम का मंचन किया है.
आज तक जितने भी लाखों प्लेस लिखे गए हैं और इतने अच्छे अच्छे प्ले राइट्स आए हैं, कितने अच्छे प्ले राइट सोफोक्लेस से लेकर एस्काइलस से लेकर एरिस्टोफेंस वगैरह वगैरह, और यहाँ भास से लेकर कालिदास से लेकर हर्ष से लेकर कितने अच्छे अच्छे प्ले राइट हमारे भी. लेकिन ये प्ले जो है उसमें हमेशा सिस्टम को कई प्लेस में नकारा है. और
And we're also remembering Parveen Sultanawali Muhammad Khan Ji. And if you're thinking, who is she? Well, this is the original or real name of Parveen Babi, a fine actress of yesteryears, one of the highest paid actresses of the 70s and 80s. And we all know that she began as a model, but later on went on to act in many films like Charitra, Deewar, Amar Akbar Anthony, Kala Patthar, Suhaag, Burning Train, Chaan, Kranti, Kalia, and Namak Halal. और नमक हलाल का बड़ा खूबसूरत सा ये गाना है एंड विच क्लियरली शोज हर ग्लैमरस फैसेट टू द सिनेमा. And now it's time to probably call a wrap. Manoj, I hope the listeners liked our show today.
जी हाँ, अब हम आपसे विदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए
नमस्कार. सुनते रहिए FM Gold. नमस्कार.